दी, अक्षय जी जो बहुत अच्छे हैं ना। पता है, उन्होंने मेरे जख्म को साफ करके उस पर बैंडेड भी लगाया था, और जैसे आप मुझे समझाती हैं वैसे ही समझा भी रहे थे। वो जितने अच्छे दिखते हैं दिल के भी उतने ही अच्छे हैं। उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, मुझे तो उनसे बात करके बहुत मज़ा आया। अक्षय से मिलने के बाद अप्पू मैडम पर तो जैसे उसका जादू ही चल गया था। एक ही मुलाकात में वो उससे खासी इम्प्रेस हो चुकी थी। उसकी तारीफ करते उसकी ज़ुबान नहीं थक रही थी, और बात सच भी थी, इसलिए राधिका ने उसकी हर बात पर मुस्कुराकर हामी भर दी। दी, अनु दी बहुत लकी हैं जो उन्हें अक्षय जीजू जैसे हस्बैंड मिले हैं। वो कितनी स्वीट हैं, और जीजू भी बिल्कुल वैसे ही हैं, बस थोड़े से शरारती हैं। दे आर जस्ट मेड फॉर ईच अदर। अनु लकी है, पर अक्षय जी भी कम खुशकिस्मत नहीं है। अगर वो लाखों में एक है तो अनु करोड़ों में एक है, और अक्षय जी को पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है उसने। हर किसी की बस की बात नहीं इतना सहना। फिर भी दी, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना किस्मत की ही बात है। आप नहीं कहती, अगर लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो 100 मुश्किलों के बावजूद ज़िंदगी खुशी खुशी कट जाती है, पर अगर वही खराब हो तो अच्छी खासी ज़िंदगी को जहन्नुम बनते भी देर नहीं लगती। हाँ, और ये बात लड़का लड़की दोनों पर लागू होती है। लाइफ पार्टनर का अच्छा होना दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अक्षय जी और अनु दोनों ही लकी हैं कि उन्हें एक दूसरे के रूप में एक काबिल, समझदार, केयरिंग और सपोर्टिव पार्टनर मिला। हाँ, ये बात तो सही है। दी, मुझे भी ना अक्षय जीजू जैसे ही लाइफ पार्टनर चाहिए। बातों बातों में अर्पिता ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, जिसे सुनकर राधिका मुस्कुरा दी और प्यार से उसकी गाल को अपनी हथेली से छूते हुए बोली, बिल्कुल, तुम्हारे लिए मैं ऐसे ही लाइफ पार्टनर को ढूंढूंगी जो मेरी प्यारी बहन को अपनी पलकों पर बिठा कर रखे, उसे जितना प्यार करे उसे कहीं गुना ज्यादा उसकी परवाह करे, सम्मान करे, जो सिर्फ रिश्ता जोड़े ना बल्कि उसे निभाना भी जाने, जो तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दे और तुम्हारी लाइफ को खुशियों से भर दे। पर दी, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। शादी का सोचकर ही अर्पिता बेचैन हो उठी और विचलित निगाहों से उसे देखने लगी। अभी तो तुम्हारी शादी में वक्त है, अभी से इतना परेशान क्यों हो रही हो? पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, उसके बाद इस बारे में सोचेंगे। राधिका ने प्यार से समझाते हुए उसके गाल को थपथपाया और सामने देखने लगी। अभी के लिए उसने बात टाल जरूर दी थी, पर अर्पिता के मन में ये बात बैठ गई थी। कुछ देर वो परेशान सी राधिका को देखती रही, फिर उसके मन में अचानक ही माधव का ख्याल आया और उसके चेहरे के भाव बदल गए। दीदी, आप इतनी देर तक माधव जी से क्या बातें कर रही थी? बड़ी ही जिज्ञासा से उसने सवाल किया और उत्सुकता भरी नजरों से उसे देखने लगी। माधव का जिक्र सुनकर पल भर को राधिका के चेहरे के भाव कुछ बदले, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। कुछ नहीं, बस तुमने जो बहादुरी का कारनामा किया था उसके लिए तारीफ कर रहे थे और थैंक यू कह रहे थे। सच में इतनी देर में आप दोनों के बीच बस यही बातें हुई? अर्पिता ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए अपनी हैरानी जाहिर की, साथ ही शक भरी नजरों से उसे देखने भी लगी। राधिका ने आंखें तरेर कर उसे घूरा और खींचते हुए सवाल किया, हाँ तो तुम्हारे हिसाब से और क्या बातें होनी थी? पता नहीं, पर पुलिस स्टेशन में जिस तरह से वो आपको देख रहे थे, मुझे लगा जैसे उनके पास आपको कहने के लिए बहुत कुछ है। तभी तो मैं अक्षय जीजू संग चली गई थी, ताकि आप दोनों को प्राइवेसी मिल जाए और खुलकर एक दूसरे से बात कर सके। अर्पिता ने लापरवाही से कंधे उचकाए और गहन दृष्टि राधिका पर डाली, जिसके हाव भाव कुछ बदले जरूर, पर अगले ही पल उसने एक बार फिर उसके सर पर चपत लगाते हुए उसे फटकार दिया। दादी अम्मा, अपने इस छोटे से दिमाग को इतना मत चलाया करो। जो भी थोड़ा बहुत है वो भी अगर इन फिजूल चीजों में खत्म हो गया तो आगे खाली दिमाग लिए घूमती रहोगी। अर्पिता ने अपने सर को सहलाया और नाक मुंह से कोरते हुए नाराजगी से बोली, नहीं बताना तो मत बताओ ना, मार क्यों रही हो? अच्छा, मतलब मैं तुमसे बात छुपा रही हो, ये कहना चाह रही हो तुम? राधिका ने भौंसे कोरते हुए नाराजगी से उसे घूरा। अर्पिता ने तुनकते हुए तुरंत ही हामी भर दी, हाँ, और अपने झूठ को अपने गुस्से के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही है। दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं था। अभी दोनों बहनें एक दूसरे को घूर ही रही थीं कि रिक्शा उनके घर के बाहर आकर रुका, और इसके साथ ही उनका ध्यान भी टूटा। अर्पिता मुंह फुलाए रिक्शे से उतरकर घर की ओर बढ़ गई, जबकि राधिका ने उसके नखरे और नाराजगी भरा चेहरा देखकर अफसोस से सर हिलाया और रिक्शे वाले को पैसे देने लगी। बेटा, अप्पू को क्या हुआ? मुंह क्यों फुलाया हुआ है उसने? वो दरवाजे पर पहुंची ही थी कि आशुतोष जी ने विचलित निगाहों से उसे देखते हुए सवाल कर लिया। कुछ नहीं पापा, बस हमारी छोटी सी बहस हो गई तो उसी पर नाराज हो गई है, कुछ देर में वापस नॉर्मल हो जाएगी। राधिका ने मुस्कुराते हुए उन्हें सब ठीक होने पर विश्वास दिलाने का भरसक प्रयास किया। इतने में उन्होंने विचलित निगाहों से उसे देखते हुए अगला सवाल पूछ लिया, और तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ गई थी? कुछ बताकर भी नहीं गई हमें, कितनी चिंता हो रही थी हमें तुम्हारी। आशुतोष जी का ये सवाल सुनकर राधिका पल भर को सकपका गई, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाला। अप्पू का फोन आया था पापा, उसकी बस रास्ते में खराब हो गई थी और दूसरी बस भी नहीं मिल रही थी, शाम भी हो गई थी तो बस उसे ही लाने गई थी। सॉरी, जल्दबाजी में आपको बताकर नहीं गई। कोई बात नहीं बेटा, पर आगे से ऐसे हमें बिना बताए मत जाना, हमें चिंता होती है। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। राधिका ने तुरंत ही निगाहें उनकी ओर उठाई और हल्की नाराजगी से बोली, क्यों इतनी चिंता करते हैं आप मेरी? इतनी तो बड़ी हो गई हूँ मैं, अपना ख्याल खुद से रख सकती हूँ और आपको और अप्पू को भी संभाल सकती हूँ। आपको तो अब अपनी सारी चिंता मुझे सौंपकर निश्चिंत हो जाना चाहिए। हम भी ऐसा चाहते हैं बेटा, पर बेटियों के बाप है ना, जब तक उन्हें उनके घर का होते नहीं देख लेते, चिंता तो लगी ही रहेगी हमें। फिर समय भी खराब है, रोज ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि दिल घबराता है। हर समय भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बेटियों को हर बुरी नजर से बचा कर रखे और हमें बस इतना समय दे दे कि अपने जीते जी हम बस अपनी सभी बेटियों को सुरक्षित हाथों में सौंप कर निश्चिंत हो जाएं। उन्हें उनकी खुशहाल घर गृहस्थी में रमते देख कर इस सुकून के साथ इस दुनिया से विदा लें कि हमारी सभी बेटियाँ हमारे बाद भी सुरक्षित व खुश रहेंगी। अगर ऐसा ना कर सके तो तुम्हारी माँ को क्या मुंह दिखाएंगे हम? अच्छे पति तो बन नहीं सके, एक अच्छे पिता भी नहीं बन सके, तो उनसे कैसे नजरें मिला पाएंगे? एक पिता की चिंता जायज थी। आशुतोष जी कुछ भावुक नजर आए तो कुछ निराशा व चिंता भी छलक रही थी उनकी बातों में, जिन्हें महसूस करते हुए राधिका बेचैन हो गई और उसने तुरंत ही उन्हें टोका। पापा, आप फिर वही सब बातें लेकर बैठ गए। आप एक अच्छे पति थे और बहुत 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 अच्छे पिता हैं। कोई चाहे कुछ भी कहे, पर मेरी नज़र में आपने अपने सभी रिश्ते बहुत अच्छे से निभाए हैं और हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया है। माँ खुशकिस्मत थी जो उन्हें आप जैसा पति मिला था, इसका एहसास उन्हें भी हुआ होगा, और हम सब बहुत लकी हैं कि हमें आप पिता के रूप में मिले। आप मेरे रोल मॉडल हैं, मेरी हिम्मत और मेरी प्रेरणा है। ऐसी बातें करके मुझे दुखी मत किया कीजिए। कुछ नहीं होगा आपको, अभी तो आपको अपनी सेंचुरी पूरी करनी है, अप्पू की शादी करनी है, उसके बाद हम दोनों बाप बेटी मिलकर मजे से जिंदगी गुजारेंगे। आखिर में राधिका सौम्यता से मुस्कुरा उठी, पर आशुतोष जी अब भी कुछ विचलित से नजर आए। राधु बेटा, आगे कुछ नहीं पापा, आप जाकर अपने दोस्तों से मिलिए, मैं डिनर की तैयारी करने जा रही हूँ। राधिका ने उनकी बात काट दी और मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। पीछे खड़े आशुतोष जी उसे देखते हुए मन ही मन कहने लगे,
आप जानती हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर हमें कुछ कहने ही नहीं देती, और आपके इसी व्यवहार के कारण हमें सबसे ज्यादा चिंता आपकी ही रहती है। जानते हैं हम, जैसे आपने बाकी दोनों बहनों की जिंदगी संवार दी है, वैसे ही अप्पू की शादी भी एक अच्छे घर में करवाकर उनके भविष्य को भी सुरक्षित कर देंगी, पर अपने बारे में नहीं सोचोगी। कुछ सोचते हुए उनके मुख पर गहरे दुख, नाउम्मीदी व निराशा के भाव उभर आए। राधिका सीधे अर्पिता के रूम में पहुंची। उसकी प्यारी और लाडली बहन उससे नाराज जो हो गई थी, सो अब मनाना भी था। राधिका कमरे में आई तो अर्पिता मुंह फुलाए बेड पर यूं बैठी थी जैसे उसके आकर मनाने का ही इंतजार कर रही थी। लगता है कोई बहुत ज्यादा नाराज है हमसे, राधिका ने जरा तेज आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर अर्पिता ने नाराजगी से मुंह फुलाते हुए अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। अरे, इतना गुस्सा कि अब अपनी दी को देखना भी गवारा नहीं, राधिका ने हैरानी के साथ दुख व निराशा जताई तो अर्पिता ने हाथ बांधते हुए मुंह ऐंठ लिया। राधिका उसे देखकर मुस्कुराई और उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोली, देखो तो आज हमारी मुस्कुराहट ही हमसे रूठकर यहाँ मुंह फुलाए नेठी है, अब कैसे मनाया जाए उसे? राधिका ने नाटकीय अंदाज में कहा और सोचने का नाटक करने लगी, जिसे देखकर अर्पिता ने तुनकते हुए कहा, आज नहीं मानने वाली मैं। अच्छा, तो इतनी नाराज हो? हाँ, अर्पिता ने तुरंत ही नाराजगी से गालों को फुलाते हुए हामी भर दी। फिर तो मुझे अपनी प्यारी सी बहन को मनाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, पर उससे पहले उसकी खोई मुस्कान लौटानी पड़ेगी। अभी तक तो यही थी, अब जाने कहाँ छुपकर बैठ गई है, राधिका ने एक बार फिर नाटकीय अंदाज में कहा और आसपास उसकी मुस्कुराहट ढूंढने की कोशिश करने लगी। अरे, कहाँ गई मेरी बहन की मुस्कुराहट? यहीं तो रहती है, कहीं यहाँ तो नहीं छुपी? अरे, लगता है यहाँ पर छुपी बैठी है, अभी उसे ढूंढकर बाहर निकालती हूँ। अर्पिता जो मुंह फुलाए बैठी थी, उसकी हरकतें और कोशिशें देख रही थी। राधिका ने जैसे ही उसके पेट में गुदगुदी की, वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और हंसते हंसते उसके गले से लग गई। राधिका ने भी उसे अपने गले से लगाते हुए मुस्कुराकर उसके सर को चूम लिया। अब तो नाराज नहीं तुम? अर्पिता ने झट से इनकार में सर हिलाया, फिर उससे दूर होकर बैठ गई और चेहरे पर गंभीर भाव लिए उसे देखने लगी। दी, सच सच बताओ ना, माधव जी से क्या बात हुई आपकी? पहले तुम हमारे एक सवाल का जवाब दो कि तुम्हें उनके बारे में जानने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? राधिका का ये सवाल सुनकर अर्पिता बगले झांकने लगी। ये देखकर राधिका के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। अप्पू, ज्यादा मत सोचो, जो तुम चाहती हो वो मुमकिन नहीं। याद है ना तुम्हें, उनकी शादी हो चुकी है और मैं अब डिवोर्सी हूँ। जब पहले मैं उनके लिए सही नहीं थी, तो अब तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं, इसलिए ये सब बातें अपने मन से निकाल दो, राधिका ने प्यार से उसे समझाया, जिस पर अर्पिता ने हामी तो भर दी, पर अब वो काफी उदास व निराश नजर आ रही थी। राधिका ने उसे चेंज करने को कहा और रसोई में पहुंच गई। उसे तो समझाई थी, पर खुद के दिमाग से माधव के ख्याल को निकालने में वो असमर्थ थी। राधिका खाना बना रही थी, पर उसके जहन में माधव की कही बातें ही चल रही थी और दिल व दिमाग बुरी तरह से उलझ गया था। टू बी कंटिन्यूड।